दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज़ को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समात फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज बुध है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकते हैं नगमा सहर और अदब खजाना। दोस्तों, ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की ज़ेर निगरानी तैयार किए गए हैं, तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 12वां बाब 24 से 26 आयत तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीफ करे, और जहाँ मैं हूँ वही मेरा खातिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, शहीदों का लहू क्लीसिया का बीज होता है। शहीदों ही की कुर्बानियों से क्लीसिया अपने शबाब को पहुंचती है। आज क्लीसिया मुकद्दस लॉरेंस शहीद की ईद मनाती है, जो क्लीसिया का शहीद है। आज के कलाम में हमने सुना कि बस मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। किसान गंदुम काश्त करता है तो खेत में चंद किलो गंदुम का बीज बखेरता है। गंदुम का बीज सुहागे के जरिए दफन हो जाता है। बीज उगता है तो बहुत बड़ी फसल तैयार होती है। आज के कलाम का मफहूम यही है कि फना में बका है। यीशु ने अपनी कुर्बानी दी तो पूरी कायनात को निजात मिली। यीशु की शहादत बेहतरीन है, इससे जिंदगी के सोते फूटते हैं। यीशु के लहू से निजात आई। मसीह यीशु की पैरवी करते हुए ही मुकद्दस लॉरेंस ने अपनी क्लीसिया के लिए अपनी जान दी। मुकद्दस लॉरेंस का आज यौम यादगार है। मुकद्दस लॉरेंस 34वीं सदी का शहीद है। उसे वॉल्टन हाकिम के दौर में ही शहीद किया गया। मुकद्दस लॉरेंस के साथ 4 और डीकन भी थे। ये मुकद्दस पोप क्रिस्टस डोम का अहद था। इसे वेरानो के कंपसी बरास्ता तरबीतीना में दफनाया गया, जहां पर कॉन्स्टेंटाइन आसम ने एक बाल फ्ली का बड़ा गिरजा तामीर करवाया। मुकद्दस लॉरेंस के इस अजीम चर्च की जियारत और इबादत जायरीन में आज तक जारी है। खुदा खुशी से देने वालों को प्यार करता है, और इन मसीहियों और शहीदों ने खुशी से अपनी जानों का नसराना खुदा बाप की नसर किया। दुआ करें कि खुदावन हमें भी ये तौफीक अता फरमा, ताकि हम हर मुश्किल हर मुसीबत में साबित कदम रहें और वक्त आने पर अपनी जान का नसराना तेरे लिए पेश करने से दुरेक ना करें। आमीन।
سامعین، پروگرام پیش خدمت ہے ادب خزانہ، حاضر خدمت ہیں آپ کے دوست، آپ کے میزبان یونس سنی اور عامر سہیل۔ ہماری جانب سے ہمارا بہت ہی عقیدت بھرا سلام اور ہماری ڈھیروں دعائیں قبول کیجیے۔
سامعین، ہماری تو یہی دعا ہے کہ خداوند تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھوتی داستان سے، جس میں شکوے ہیں اور توقعات ہیں، اور یہ ایک غریب آدمی کا ماجرا ہے اور وہ اپنے دل کی غربت سے بھی آگانا تھا۔ تحریر ہے اشفاق قریشی کی، آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اور اس داستان کا عنوان ہے آئینہ۔
سماعت فرمائیے۔ شام ڈھلنے کا سوچ رہی تھی، ہوا بھی کسی کھوج میں گم تھی۔ میں گھر سے مغرب کی نماز کے لیے نکلا تھا، چونکہ ابھی وقت نے انگڑائی لینے کو ہاتھ نہ اٹھائے تھے، اس لیے میں تسبیح ہاتھ میں لیے ورد کرتا ہوا قریبی باغیچے کی طرف نکل آیا تھا۔ ایک جگہ میں سڑک کے کنارے چلتے چلتے سرا رکا اور تچھی نظروں سے بائیں جانب دیکھا۔ وہاں لڑکے کرکٹ کی نیٹ پریکٹس کر رہے تھے۔ میں رخ موڑ کر بیٹنگ کرتے ہوئے لڑکے کی مہارت کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری بائیں جانب سے سڑک کے کنارے کوئی لہراتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے دیکھا تو ایک آدمی کٹی پتنگ کی طرح جھپ کھا کر میرے قریب آ گیا اور زردی مائل دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ پہلے خیال نے سرگوشی کی کہ شاید یہ نیم دیوانہ اور کچھ طلب کرنے کو ہے۔ میں نے اس کی مٹیالی رنگت کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہاں کسی طور بے ترتیبی کے آثار نہ تھے۔ اس کے بال بہت چھوٹے تھے، مجھے وہ بھی مٹیالے لگے۔ لباس بھی مٹیالا، ہاتھ بھی مٹیالے، بازو بھی مٹیالے۔ مجھے یوں لگا کہ ایک مٹیالا مجسمہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ میری سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی ڈبیا مجھے دکھائی اور لہرا کر کہا۔
میں نے سوچا کہ کسی سے پوچھ لینا اچھی بات ہے، کہو کیا بات ہے؟ کیا بازو میں درد ہے؟ اس نے بایاں بازو دبایا ہوا تھا۔ میں نے اس کے دبلے سے مٹیالے بازو پر نگاہ ڈالی اور بےتابی سے گہرا سانس لیا کہ اب یہ مطلب کی بات کرے اور جائے۔ اس نے شاید میری بےتابی بھانپ لی، مسکراہٹ اس کی نظروں سے جھانکنے لگی۔ میں نے آپ جیسے ایک سیانے سے بات کی تو اس نے مجھے یہ دوا لگانے کو دی ہے، اس نے ڈبیا پھر میرے سامنے کی۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ میں نے بھی اسے مسکراہٹ کی بھیک دے ڈالی۔ میں نے سوچا کسی اور سیانے کو دکھا لوں۔ میں نے ڈبیا پکڑی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ مرہم مجھے آئیوڈیکس جیسی لگی۔ میں نے جانا کہ یہ درد کے لیے ہی ہوگی۔ میں اب کیا کہوں؟ میں نے سوچا خدا کسی کو بے بس نہ کرے کہ وہ تنہائی کے زندہ میں پھنس جائے اور دیواروں سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر توانا لہجے میں کہا، یہ دوا بالکل ٹھیک ہے، صبح شام لگاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بس جی، میں نے یہی پوچھنا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ڈبیا پکڑی اور لہراتی چال کے ساتھ آگے نکل گیا۔
دو دن بعد شام کی اسی کیفیت میں میں اسی باغیچے میں ٹہل رہا تھا۔ تسبیح پہ ورد بھی جاری تھا اور کرکٹ کی پریکٹس پہ نظر بھی تھی۔ ایک طرف جھولوں پر بچوں کے جھرمٹ تھے، خالی جگہ میں ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے چند لڑکے فٹ بال بھی کھیل رہے تھے۔ بینچوں پر بیٹھے لوگ رونقِ بزم سے بہلے ہوئے تھے۔ اس ہنگامے سے بے نیاز سورج آہستگی سے ڈل رہا تھا، روشنی سمٹ رہی تھی، تاہم میری نظروں کی آوارگی ابھی سمٹی نہ تھی۔ میری نظر باغیچے کے ٹیوب ویل کی طرف لگی تو مجھے وہ مٹیالا مجسمہ دکھائی دیا۔ وہ وہاں برقی کولر سے ٹھنڈا پانی ایک برتن میں بھر رہا تھا۔ پانی لے کر وہ وہاں نہ ٹھہرا اور لہراتا ہوا اگلے گیٹ کی طرف چلا گیا، جیسے رون کے بزم سے اسے کوئی مطلب نہ ہو، جیسے اس کے لیے وہاں کوئی دل بہلانے کی چیز نہ ہو، یا جیسے اس پہ کوئی پابندی ہو کہ خبردار رکنا نہیں، پانی لو اور پلٹ آؤ۔
چند اگلے روز بھی میں نے اس پر نظر رکھی۔ اس کی وہی چال، وہی ادا تھی، نہ رکتا نہ کسی سے بات کرتا۔ ایک طرف سے باغیچے میں داخل ہوتا، سیدھا کولر کی طرف جاتا، برتن میں پانی بھرتا اور دور اگلے گیٹ کی طرف چل دیتا۔ ایک روز مجھے خیال گزرا کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے قریبی گیٹ سے باغیچے میں داخل ہوتا ہے، مگر جاتے ہوئے دور والے گیٹ سے نکلتا ہے اور ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس جاتا ہے۔ ایک روز میں معمول سے قدرے دیر سے باغیچے کی طرف جا رہا تھا कि वो मुझे सामने से आता हुआ नजर आया। वो पानी लेकर लौट रहा था। हमारी नजरें मिली तो वो खिलसा गया। वो मेरी तरफ लहरा कर आया और झुककर सलाम किया। मैंने उसका मसाफे के लिए बड़ा हुआ मटियाला हाथ थाम लिया और कहा, कहो अब क्या हाल है। उसने जरा गर्दन उठाई और एक उंगली आसमान की तरफ सीधी की और कहा, खुदा का बड़ा करम है, रब की बड़ी रहमत है।
उसके लहजे की तवानाई और यकीन की शिद्दत से मैं चौंक सा गया। मुझे ऐसे लगा जैसे अपनी फसल ठिकाने लगाने के बाद हवारियों में बैठे किसी चौधरी ने हुक्के का एक कश लेकर दिखावे की खातिर अल्लाह का शुक्र अदा किया हो, मगर मेरे सामने खड़े आदमी के लहजे में महज दिखावा नहीं, एक रचाओ सा था, जैसे उसकी जुबान बनी ही शुक्र अदा करने के लिए हो। मैं दिल में बेमजा हुआ, जैसे उसके इस कलाम के सामने मेरा तस्बीह पे विर्द एक सतही सी बात हो। मैं तस्बीह को मुट्ठी में दबाकर उसके मटियाले हुलिये का जायजा लेने लगा। मैंने सोचा ये मटियाला जरूर है, मगर कोई इसे गंदा नहीं कह सकता। खुदाया, ये घिसे हुए खाकी मटियाले कपड़ों के अलावा कोई और कपड़े क्यों नहीं पहनता? तबा से वो बेपरवाह लगता है जैसे उसे हर चीज मयस्सर हो, जैसे उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। इसी इसना में उसने मुझे रुखसती का सलाम किया और लहरा कर आगे निकल गया।
एक रोज मैं बागीचे में ऐसे हिस्से में खड़ा था जो उसके वापसी के रास्ते के करीब था। उसने मुझे देखा तो हंसते हुए मेरी तरफ लपका। उस घड़ी मेरी तबा भी कदरे फराख थी। मैंने छूटते ही सवाल किया, चौधरी ये क्या बात हुई, इस तरफ से आते हो और लौटते हुए उस तरफ इतना लंबा चक्कर काट कर वापिस जाते हो। वो एक अदा से हंसा, फिर मेरी तरफ कदरे झुका और होंठ संवारे जैसे कोई राज की बात कहने लगा हो। वो धीमे लहजे में बोला,
जनाब जब बंदा बाहर निकलता है तो 100 सज्जन 100 दुश्मन, ये भी एक चाल है कि इधर से आओ उधर से आओ, किसी को समझ ही ना आए कि मामला क्या है। समझ गए ना आप? बात खत्म करते हुए उसका लहजा फिर तवाना हुआ तो वो हंस दिया। मैंने भी हंसने में उसका साथ दिया जैसे उसने कोई मार्फत की बात की हो, और मैं समझ गया हूँ। मैंने उसकी तलिस्माती बात के असर से निकलने की खातिर कहा, तुम हो कहाँ के? बूरे वाले के पास एक गांव है जनाब, मेरा घर वहां पर है। कोई घर वाले हैं? हाँ जी, बीवी है, लड़की है, लड़का है। उसके मटियाले हुली और नातवा बदन से निकलते हुए कव्वी लहजे से मुझे उकताहट सी हुई। मैंने कदरे चिढ़कर पूछा, तो यहाँ क्या करते हो? करना क्या है जी, वक्त गुजारना है, वो गुजर रहा है। सामिन, इस खूबसूरत कहानी का बकिया हिस्सा हमें आपकी समातों की नजर करना है। प्रोग्राम में अभी वक्त है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर हुए।
दूसरी रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अदब खजाना।
सामिन, हम आपकी समातों की नजर कर रहे हैं एक खूबसूरत कहानी जिसका उन्वान है आईना, और ये कहानी जो है इश्फाक कुरैशी के कलम का शाहकार है। अब समात फरमाइए इस कहानी का बकिया हिस्सा।
उसकी ये बात फिर मुझे कोई मार्फत की बात लगी। मैं लाजवाब होकर कुछ ना बोला। इफ्फत के लम्हे से निकलने की खातिर मैं उसके मटियाले कपड़े, मटियाले खिचड़ी, बाल देखकर सोचने लगा, काश जहां ये मुलाजिम है वो इसे कपड़े धोने के लिए साबुन ही दे दिया करें। अच्छा जी, रब राखा, उसने दाया हाथ लहरा कर कहा और जाने के लिए पलटा, जरा सुनो। वो मुतवज्जो हुआ तो उसकी नजरों में सवाल ना था, वही हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने भी हाथ लहरा कर तमस्कर से कहा, कल यहां से गुजरो तो मुझे जरूर मिलना। कल कोई खास बात है? बस तुम्हारे लिए एक चीज है मेरे पास।
उसने सीने पे हाथ रखा और लहरा कर पलट गया। मैं भी मुड़कर क्रिकेट की प्रैक्टिस देखने लगा। चंद लम्हों के बाद मैंने फिर उसी सिमत देखा। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ जा रहा था जैसे सहरा में ऊंट जा रहा हो, जैसे परेशान हो के गाड़ी न छूट जाए। मेरी तस्बीह तेज होती गई, मेरी तबीयत में बेकरारी सी आई। मैंने सोचा, खुदाया ये किस कैद में मुब्तला है। अगली शाम मैं उसके इंतजार में बागीचे में टहलता रहा। मेरी जेब में 1000 का एक नोट दम सादे पड़ा था, एक मुकालमा रह रहकर मेरे दिमाग में किलबिला रहा था। ये तुम रख लो, इस दफा घर जाओ तो अपने बीवी और बच्चों के लिए नए कपड़े ले जाना। शाम ने घूंघट दराज कर लिया मगर वो ना आया। वो उसी ढंग की एक शाम थी।
वो बरकी कूलर से पानी लेकर रवाना हुआ तो हमने एक दूसरे को देखा। वो किसी परिंदे की तरह उड़कर मेरी तरफ आया। उसने लहक कर सलाम किया तो मैंने भी खुश तबई से कहा, क्यों भाई इतने दिन कहाँ गायब रहे? मैं जी गांव चला गया था। मैंने दिल में सोचा, कैसा बेवकूफ है, उस रोज मुझसे मिल लेता तो गांव खाली हाथ ना जाता। अपना नुकसान भी किया, मेरा मुकालमा भी जाया करवाया। मैंने कदरे तेज लहजे में पूछा, तुम अगले रोज क्यों ना आए? वो कुछ देर सोच में गुम रहा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो सोच से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे उसे कोई बहाना हाथ लगा हो। उस रोज घर गया तो गांव से फोन आया था, बेटी बीमार हो गई थी। उसी रात मैं गांव रवाना हो गया था। ओ अच्छा, क्या उम्र है उसकी? मैंने बेयकीनी से पूछा। खैर से जवान है जी, डॉक्टरी पढ़ती है। मुझे उसकी ये बात पसंद न आई। मैं दिल में हंसा कि यह आदमी क्या बात कर रहा है, जरा कोई इसका हुलिया तो देखे, ये बेटी को मेडिकल क्या पढ़ाएगा। मुझे खामोश देखकर उसने अपनी बात पर गिरा लगाई, उसे जी ऑपरेशन करना भी सिखाते हैं। मुझे फिर उसकी बात हजम न हुई। मैंने दिल की तसल्ली के लिए सोचा, इस गरीब को क्या मालूम, वो जरूर नर्सिंग का कोई छोटा मोटा कोर्स कर रही होगी।
उसकी एक जगह बात भी चलाई है। उसने आहिस्तगी से कहा, मुझे जैसे राजना बना रहा हो। क्या रिश्तेदारों में? नहीं जी, वो एक दूसरे गांव के हैं। लड़का फौजी जवान है। वो कहते हैं लड़की बेशक पढ़ती रहे, बस निकाह करा दे। निकाह ही क्यों, रुख्सती क्यों नहीं? निकाहनामा हो तो फौजी को अलाउंस ज्यादा मिलता है। तो क्या उसे अलाउंस की फिक्र है? वो जी हमारा क्या जाता है, लड़की और पढ़ती रहेगी। क्या तुमने लड़के को देखा है? नहीं जी, मैंने अभी उसे नहीं देखा। क्या मतलब, बेटी का रिश्ता करते हो और लड़का नहीं देखा? जी फौजी जवान का क्या देखना, क्यों, फौजी तो फौजी होता है। उसकी ये बात मेरे दिल में पेवस्त हुई। मैंने सोचा कि ये उसने एक और मार्फत की बात कही है। ये या तो बेहद सादा आदमी है या परले दर्जे का बेवकूफ है। मेरे दिल ने कहा, ये सादा आदमी है। शायद में मीर तकी मीर का एक मिसरा जहन के गोशे में कॉम्पल की तरह फूटा। कितने सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब, मैं दिल में महसूस हुआ। फिर पेशतर इसके कि मिसरा सानी जहन के दरीचे से झांकता, मैं तखयल के किसी और गर्दाब में जा गिरा। और इस एतबार से वो लाठी और भैंस वाला पुराना मुहावरा एक नए लिबास में सामने आ चुका है। जिसकी बंदूक उसकी हुकूमत, उसी की अदलिया, उसकी मकनन्ना, उसी का दस्तूर।
उस लम्हे मैं अपनी इस आवारा ख्याली पर हंस दिया। मेरे सामने खड़े सादा लो शख्स के चेहरे पर हैरत थी। तुम ठीक कहते हो, फौजी का अंजाम ऐसा ही होता है। एक शाम वो मुझे सड़क पर सामने से आता हुआ नजर आया। अचानक मुझे ख्याल आया कि 1,000 रुपये उसकी अमानत है, मुझे उसे दे देने चाहिए। क्या खबर वो गांव कब चला जाए। मुझे मस्जिद की सिमत जाना था, इसलिए उसके इंतजार में वहीं रुक गया। वो करीब आया तो मैं आहिस्तगी से मस्जिद की तरफ चलने लगा और उससे कहा, कल शाम इस वक्त से जरा पहले मुझे बागीचे में मिलना। उसने मुझ पर मुस्कुराहट निछावर की और बावाज़े बुलंद कहा, जरूर आऊंगा जी। अगली शाम मैं बागीचे में मामूल के मुताबिक टहलता रहा, वो कहीं नजर न आया। मेरी जेब में तयशुदा 1,000 का नोट पड़ा रहा। मैंने सोचा, खुदाया क्या ये इसकी किस्मत में नहीं है। मगरिब की अजान हुई तो मैं मस्जिद को रवाना हुआ। अगली शाम मैं मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो वो मुझे दिखाई दिया। उसकी वही ऊंट की सी चाल थी। वो जरा करीब आया तो मैंने जिद छोकर कहा, कल शाम तुम मुझे मिले क्यों नहीं। वो कुछ शर्मसार हुआ और खामोश रहा, जैसे कोई बहाना सोच रहा हो। फिर एकदम तवाना लहजे में बोला, कल वहां जरूर आऊंगा जी, नहीं परसों, एतवार है, सुबह किसी वक्त मेरे घर आना। मेरे लहजे की बेपरवाही से वो कुछ परेशान हुआ। मैंने जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया और कहा, मेरे घर का नंबर 92 है।
अच्छा जी, 92 नंबर, उसने याद रखने के लिए नंबर दोहराया। मैंने उसकी तरफ न देखा और चलते चलते खुद कलामी की, अब सजा के तौर पर 1,000 की बजाय 500 रुपए दूंगा। एतवार की सुबह वो मेरे घर पहुंच गया। एक रोज पहले मैंने प्रोग्राम के तहत उसके लिए 300 रुपए में शलवार कमीज का कपड़ा खरीदा था। मैं कपड़े का पैकेट उठाकर और 200 रुपए जेब में डालकर गेट से बाहर निकला। वो उसी तरह मलगजे लिबास में था। मैंने तमहीदी बातों के बाद पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ये शलवार कमीज का कपड़ा मैंने तुम्हारे लिए लिया है, ये तुम रख लो।
उसके चेहरे पर खुशी का एक रंग आया। उसने लहक कर पैकेट पकड़ लिया और कहा, ओ हजी, ये तुमने क्या किया? मैंने अपनी जेब से 200 रुपए निकाले और उसकी जेब में डालकर कहा, ये 200 रुपए भी तुम ले लो। वो मजीद खुश हुआ, फिर ठिठका। चल हमें कुछ सोचता रहा, फिर बोला, इससे बेहतर था कि तुम मुझे जूते ले देते। मुझे उसकी ये बात अच्छी ना लगी। मुझे ख्याल गुजरा कि यह फैलने लगा है। मैंने उसके पांव की जानिब देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने हमेशा उसके मटियाले कपड़े, मटियाला चेहरा और बाजू ही देखे। उसके पांव की तरफ कभी नजर ना गई। उसके जूते और पांव एक ही जैसे थे, दोनों बदरंग, दोनों बेहाल। उसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि गालिब के चाक गिरेबां की क्या हालत होगी कि एक बार वो कह उठा, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। मेरा दिल चाहा कि उस ऊंट जैसी चाल वाले से कह दूं, तुम्हारे पांव को जूते की क्या हाजत है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और गेट के अंदर ले आया। मैंने बागीचे में पड़ी लोहे की कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहा, तुम बैठो, मैं भी आया। घर के अंदर जाकर मैंने पर्स से 100 रुपए का एक लोट लिया और बाहर आकर उसकी जेब में डाल दिया। मैंने तरंग में कहा, लो जाओ, जूते भी ले लेना। उसने मित्र मुस्कुराकर देखा और कहा, हाजी, 300 रुपए में जूते आते हैं। मैं दिल में हंसा और इसी लहर में सोचा, मुझे मालूम है कि नहीं आते, मगर मैंने तो तुम्हें 500 रुपए देने की ठान रखी थी। या अल्लाह, ये क्या, उसकी तमन्ना फैल रही है और मेरा दिल सिमट रहा है। मैंने उसे एक तसल्ली बख्श इशारा किया और उठकर फिर घर के अंदर गया। मैंने अपने जूतों में से 2 जोड़े उठाए और बाहर आया। मैंने जूते उसके आगे रखे और कहा, ये जूते हैं, आजकल पहन रहा हूँ, ये मेरे पाँव में कदरे बड़े हैं। ये दूसरा जोड़ा बिल्कुल नया है। ये जूते मैंने हज के मौके पर मक्के से खरीदे थे। पहन कर देखो, जो पूरे आए वो ले लो।
वो कुर्सी पर बैठा जूतों को देखता रहा, फिर बोला, ये मुझे नहीं आएंगे, मेरे पाँव का नंबर 10 है। अच्छा, मेरा नंबर तो 8 है। वो खामोश बैठा जूतों को देखता रहा। मैंने उकताकर जूतों को समेटते हुए कहा, चलो छोड़ो, रहने दो। उसने नए जूतों पर हाथ रखा और हसरत से कहा, ये मेरे छोटे को पूरे आएंगे। मैंने दिल में सोचा, लो अब खुद को भूल गया और बेटा याद आ गया। मैंने बात खत्म करने की खातिर कहा, ठीक है, ले लो, अपने बेटे को दे देना। अगले चंद लम्हों में हमारी मजलिस बर्खास्त हुई। मैंने उसे रुख्सत करके गेट बंद किया और अंदर जाने के लिए पलटा तो बाहर से आवाज आई, हाजी, तुम भी कहोगे, आया था और जफ्फा ही मार लिया। मैंने गेट खोलकर कहा, अब क्या है, तुम भी कहोगे, इसने जफ्फा ही मार लिया। क्या मतलब? उसने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, जब जूते ले लिए तो अब इस नोट पर मेरा हक नहीं।
जी दोस्त, आपने कहानी समाप्त फरमाई और इस कहानी में जो छुपा पैगाम है वो भी मेरा ख्याल है कि आप तक जरूर पहुंच गया होगा। जी दोस्त, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा।
और सामिन, इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर हुए।
दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरिता एशिया।
दोस्ती रेडियो वेरिता से एशिया की उर्दू सर्विस है। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अदब खजाना।
सामिन, वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत है और आपकी समातों की नजर करते हैं। वहीद अहमद जमान की एक खूबसूरत गजल समात फरमाइए। हमारी आंख में जितने भी ख्वाब रखे थे, बनामे ख्वाब किसी ने अजाब रखे थे। हमारी आंख में जितने भी ख्वाब रखे थे, बनामे ख्वाब किसी ने अजाब रखे थे। हमारी राह में कांटे बिछाने वालों ने हमारे हाथ पे कितने गुलाब रखे थे।
वाह जी वाह, क्या बात।
हमारी राह में कांटे बिछाने वालों ने हमारे हाथ पे कितने गुलाब रखे थे।
क्या बात।
हमारे दिल को कहां मिलना था करार कहीं, कदम कदम पे यहां इज़्तिराब रखे थे।
बहुत खूब।
हमारे दिल को कहां मिलना था करार कहीं, قدم قدم پہ یہاں اضطراب رکھے تھے، ہمیں ملا جو بھی سب کچھ نظر کا دھوکا تھا، ہماری زیست میں ہر سو سراب رکھے تھے۔
واہ واہ،
ہمیں تو اتنی خبر ہے کہ تم کو چاہا تھا، کہاں نظر میں گناہ و ثواب رکھے تھے۔
واہ واہ،
ہمیں تو اتنی خبر ہے کہ تم کو چاہا تھا، کہاں نظر میں گناہ و ثواب رکھے تھے۔ ہم اپنے دل میں جدھر بھی نظر اٹھاتے تھے، تمہارے نام کے غم بے حساب رکھے تھے۔
کیا بات،
اور ہماری آنکھ میں جتنے بھی خواب رکھے تھے، بنام خواب کسی نے عذاب رکھے تھے۔
بھائی واہ، کیا بات ہے، ہماری راہ میں کانٹے بچھانے والوں نے، ہماری راہ میں کانٹے بچھانے والوں نے ہمارے ہاتھ پہ کتنے گلاب رکھے تھے۔ دوست، آپ نے وحید احمد زمان کی یہ غزل سنی، انہیں کی ایک اور غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ لکھتے ہیں، وہ سب سے ذکر میرا بار بار کرتا ہے، وہ سب سے ذکر میرا بار بار کرتا ہے، میرا ادو بھی مجھے کتنا پیار کرتا ہے، یہاں کے لوگ عجب سا مزاج رکھتے ہیں، یہاں کے لوگ عجب سا مزاج رکھتے ہیں، جو ساتھ چلتا ہے وہ چھپ کے وار کرتا ہے،
وار کرتا ہے، بہت اعلیٰ۔
یہاں کے لوگ عجب مزاج رکھتے ہیں، جو ساتھ چلتا ہے وہ چھپ کے وار کرتا ہے، بس اپنے اپنے مقاصد ہیں سب کے پیش نظر، بس اپنے اپنے مقاصد ہیں سب کے پیش نظر، وگرنہ کون یہاں کس سے پیار کرتا ہے۔ اور لکھتے ہیں، یہ تیرا عہد وفا سچ ہے مان لیتا مگر، یہ تیرا عہد وفا سچ ہے مان لیتا مگر، وہ دکھ اٹھاتا ہے جو اعتبار کرتا ہے،
بہت اعلیٰ۔
وہ سب سے ذکر میرا بار بار کرتا ہے، میرا ادو بھی مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔
واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ سامعین، آپ نے یہ خوبصورت غزل سماعت فرمائی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں لکھ بھیجئے، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے، اور ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی رائے اور مشوروں کو مقدم جانا جائے اور انہیں کی روشنی میں اپنے پروگرام کو ترتیب دیا جائے، تاکہ آپ کی سماعتوں کی اور آپ کے ذوق کی کسوٹی پر پورا اترا جا سکے۔ آج کا پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان عامر سہیل اور یونس سنی کو اجازت دیں۔
پیمبر ریڈیو ایشیا۔